الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله خالقنا العظيم. قابل احترام دوستو، معزز اساتذہ کرام، قابل قدر طلباء و طالبات، خواتین اسلام، اللہ نے انسانوں کی ترقی قربانی میں رکھی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیت کی قربانی، اور وہ چیز جو ذریعہ ترقی ہے، اسی چیز کو امت مسلمہ نے دینی نقطۂ نظر سے چھوڑ رکھا ہے. جان آدمی دین کے لیے، جس کو جان دین کے لیے سکھاتا ہے، نہ مال کو دین کی نسبتوں پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتا ہے. جس کو سکھائے گا دنیاوی نفع کے لیے، مال کو کھپائے گا دنیاوی ترقی کے لیے، دین کے لیے جان، جسم، مال، اس کے استعمال کا اہتمام بہت کم ہے، اور اگر ہے تو وہ بالکل جزوی ہے. جس وقت امت مسلمہ جان و مال کو اللہ کی نسبتوں پر خرچ کرنے کا اہتمام کرنے لگے گی، پھر سے ترقی سے حاصل ہونے لگے گی، اور دین اور اہل دین کے جو دشمن ہیں ان کو شکست ہوتی رہے. یہ جو سورۃ الکوثر ہے، اس میں پروردگار عالم نے اپنا ایک انعام بتلایا، اپنے دو مطالبے رکھے. اس انعام کے نتیجے میں ان مطالبوں کی تکمیل کرنی چاہیے، اور ان مطالبوں کی تکمیل کے نتیجے میں دشمن کی شکست یقینی. خلاصہ ہے سورۃ الکوثر. ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر ہر طرح کے خیر کو کہتے ہیں، اور خیر کثیر کو کہتے ہیں. ایک نہر کوثر ہے اور ایک حوض کوثر ہے. نہر کوثر تو جنت سے نکلتی ہے، پانی کے جمع ہونے کا جو مقام ہے وہ حوض کوثر ہے، وہ بھی کوثر ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے طرح کے خیر ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی وافر مقدار میں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ کوثر دے دیا ہے. خیر کثیر، ہر قسم کی بھلائی آپ کو دی گئی، ہر قسم کی اچھائی آپ کو عطا کی گئی. جب ایک بہت اعلیٰ ترین اور بہترین چیز ملی ہے، تو پھر اس کے شکرانے میں اللہ کی دی ہوئی دو نعمتیں، ایک جان کی، ایک مال کی، وہ دونوں کے دونوں اللہ کی نسبت پر خرچ ہونا چاہیے. اسی کا تذکرہ ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز ادا کیجئے، اور اپنی رضا، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے واسطے قربانی کی. یہ لربی کا بیچ میں ہے، تعلق دونوں سے. فصلی لربی کا ونحر لربی کا، مفہوم کے اعتبار سے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز بھی ادا کیجئے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربانی بھی کی. تمام اعمال میں یہ لربی کا کی قید ہے، سمجھ لیجیے آپ. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला व बिज़ालिका उमिरतु। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, और वो भी ऐसा अल्लाह के लिए कि उसमें कोई शरीक नहीं है उसका, और इसका मुझे हुक्म दिया गया है। मालूम यह हुआ कि तमाम चीजों में लिल्लाह की कैद है। وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء। लोगों को तो हुक्म दिया गया है कि अपना दीन खालिस अल्लाह के लिए करो। इसीलिए हदीस में भी आता है, अखलिसु अमालकुम लिल्लाह, सारे अमाल अल्लाह के वास्ते खालिस करो। अलबत्ता हज का एक अमल ऐसा अमल था कि उसमें दूसरी चीजों की आमेजिश के अंदेशे ज्यादा थे, शोहरत का अंदेशा, तिजारत का, सियाहत का अंदेशे थे। इसीलिए उसके फर्ज को बयान करने से पहले अल्लाह ने लिल्लाह की कैद लगाई। हज के फर्ज होने का बयान बाद में किया और लिल्लाह की कैद पहले लगाई कि जरा इसका ज्यादा एहतमाम करना। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत, अल्लाह की खुशनुदी के लिए लोगों के जिम्मे हज है। तमाम आमाल में अल्लाह की रजा के लिए कैद मौजूद है। इसीलिए बतलाया गया कि इखलास तमाम फर्जों में फर्ज है। न सिर्फ ये कि तमाम फर्जों में फर्ज है, बल्कि इस कदर अहम तरीन फर्ज है कि तमाम फर्जों का फर्ज है, कि उसके बगैर कबूल होते ही नहीं। अब इसकी रोशनी में जहन में रखें कि ये जो कुरान शरीफ में जगह जगह एक लफ्ज आता है कि अकीमु सलावात ज़का, अकीमु सलावात ज़का, अकीमु सलावात ज़का, वल मुकीमीन अस्सलात वल मुतून अज़का, बात क्या है? दो ही सरमाए है आदमी के पास, एक जान का एक माल का। ये दोनों को अल्लाह की निस्बत पर खर्च करने का हुक्म है। हमारी नजर खाली वो एक मखसूस अमल की तरफ होके रह जाती है। ये दो चीजों का जब इस्तेमाल लिल्लाह होने लगेगा तो फिर अल्लाह ने उसका नतीजा बयान किया, इन्ना शानी अका हुआ लब्ध, बेनाम निशान तो आपका दुश्मन होगा ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन लोगों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे फर्जंदान के गुजर जाने की बिना पर यूं कहा था कि अब तो इनकी नस्ल खत्म हो गई और इनका जो सिलसिला है बस इनकी हद तक है, चलेगा नहीं आगे। अल्लाह ने उसका जवाब दिया, इन्ना शानिया का हुआ लबतर, आपका दुश्मन बेनामो निशान होगा। सुनाचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सच्चे वफादार हर जमाने में बहुत बड़ी तादाद में रहे। 1,500 बरस गुजर गए तकरीबन, उनका काम फैलता जा रहा, बढ़ता जा रहा, चलता जा रहा, खत्म होने में क्या सवाल है, क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन उसके लिए दो काम है, जान और माल दोनों की कुर्बानी। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, औलिया इज़ाम की आप जिंदगियों को देखेंगे तो उनकी जिंदगियां इन दो आमाल से मामूर मिलेंगी, लबरेज। उनमें से एक चीज की खसूसियत से यादगार के तौर पर इस साल में एक मरतबा बकर ईद की आमद होती है, एक खसूसी मुजाहरा है। चुनाचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हजरत सहाबे किराम ने, मा हाजिहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? फरमाया, हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे जद्द अमजद हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबे किराम ने पूछा, फमालना फीहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम कुर्बानी देंगे हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या नफा होगा। फरमाया बिकुल्ली शारतिन हसना, हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाएगी। कुर्बानी के जानवर जब दुबा करेंगे तो उसके जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में एक नेकी। शायद कोई ऐसे साल भी मैंने अर्ज किया था, कोई एक ऐसा जियाला बाहौसला शख्स किसी एक जानवर की खाल ले और उसके बालों को गिन कर बता दे कि हैं कितने, ताकि एक अंदाजा लगाने में आसानी तो हो जाए। 2 साल से 3 साल से या 2 साल बोले थे, अब तक एक भी नहीं आया। हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने फिर पूछा, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानियों में एक दुम्बे और कोटले वगैरह की कुर्बानी होती है, उनके ऊपर ऊन होता है, ऊन उनका क्या होगा? तमस्सुफ। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊन वाले अगर जानवर की कुर्बानी हो तो उसका क्या मसला है, उसमें क्या मिलेगा? फरमाया बिकुल शारतिन मिन सूफ हसना, ऊन में से भी हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। इतनी बड़ी चीज है कुर्बानी। इसीलिए अमल की फजीलत के एतबार से तो ये अमल ऐसा है कि अगर किसी शख्स के जिम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं है, तब भी उसको फजीलत हासिल करने के वास्ते अगर कुछ कोशिश कर सकता है इस सवाब के पाने की, तो कर लेना चाहिए। यही मिसाल के तौर पर आपकी यौमिया जरूरत की चीज है चावल, जो आजकल जो है 3,500 रुपए 4,000 रुपये को थैला मिल रहा। अगर कोई दुकानदार जरूरतमंदों की हालत पर तरस खाते हुए यूं कहे 100 रुपये में थैला, बजाय 3,500 के बजाय 4,000 के 100 रुपये में थैला बोल के बोल गया, कहां 3,500 कहां 100। आप देखेंगे कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी दोस्तों के पास जाके बोलेंगे कि जरा 100 रुपये आप दे दो, कैसा भी मैं करके अदा कर देता हूँ, अदा कर देती हूँ। 100 रुपये तो थैला मिलता, घर में पहले से है उसके बावजूद आप देखेंगे जाके लाएंगे। घर में पैसा नहीं है तब भी आप देखेंगे कहीं से मुहैया करेंगे और लेकर आएंगे। अब इतना सवाब जो मिलेगा कुर्बानी का, फजीलत के एतबार से तो ऐसा अजीम अमल है कि जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, सवाब पाने के लिए उनको भी थोड़ी सी कोशिश कर डालनी चाहिए। सजाए कि अब ये मसला बोलना पड़ रहा है, साहेब इस्तेदात आप हैं, पैसा अल्लाह ने आपको दिया है, जायदाद आपके पास है, प्लाटों पर प्लाट आपने खरीद रखे हैं, बैंकों में पैसा है, कुर्बानी जरूरी है, देखेंगे मुल साहब। तो आज ही मैं कुर्बानी और नहीं करते, जरूरी है उनके जिम्मे और नहीं करते, और मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने बना बड़ी मुश्किल से जोड़ के रखें, फलाने काम के वास्ते रखें, ऐसा दे देंगे तो कैसा होगा, हंस को नहीं जा रहे लोग। अरे भाई 8-8, 10-10 लाख रुपए जमा करके बैंकों में रखे हुए हैं और उनसे कहा जाए कि भाई आपके जिम्मे हज फर्ज है, जाओ। नहीं मन साहब, आपको मालूम नहीं मेरे को 2-2, 3-3 बेटियां हैं, उनके वास्ते रखो। अरे बेटियां देने वाला वहां बुला के दो मांगो वो दे दो बोल के बोल रहा हूँ, वहां जाओ फरीजा भी अदा करो, उससे वो भी मंगने की आवाज नहीं जाता। यहाँ तकरीबन हर मुकर्रर से सुनते हैं, बैतुल्लाह को देखते ही सबसे पहले आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल करेंगे, और एक का दो का नहीं सैकड़ों हजारों का तजर्बा है। पगन नहीं जाते, हज फर्ज है अदा नहीं करते, कुर्बानी फर्ज होती है अदा नहीं करते। सुना है बाज बाज घरानों का किस्सा तो ऐसा है कि जो शख्स पर वाजिब है कुर्बानी वो अपनी तरफ से नहीं देता, कोई गुजरे हुए अपने खानदान के बड़े लोगों की तरफ से दे देता है। उनके जिम्मे तो वाजिब नहीं है ना, आपके जिम्मे वाजिब है, आप अपना वाजिब अदा करो, और अगर अल्लाह ने और दे रखा है तो उनके सवाब की नियत से उनकी तरफ से भी करो, लेकिन अपना वाजिब क्यों नहीं अदा करते? ये खराबी ये देखने में आती है या सुनने में आती, एक खराबी और देखने में आती वो ये कि साहब घर में बाबा पैसे वाला, अम्मा जेवर वाली, बेटा कमाई वाला हो गए, एक नहीं दो दो तीन तीन बेटे कमा रहे हैं और अच्छी कमा रहे हैं, कमाई खूब है, बाप के पास भी खूब है सरमाया, माँ के पास भी खूब है जेवर, मगर उस शौक की तरफ से एक कुर्बानी दे देगा, प्यार की तरफ से। अरे भाई अगर ऐसा होता, घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं, बूढ़े दादा दादी होते हैं, बूढ़ी नाना नानी होते हैं, बाबा की उम्र भी कुछ बढ़ी हुई होती है, बच्चे जवान होते हैं, कोई एक नमाज अदा कर लिया तो सब की तरफ से अदा हो जाता था ना? नहीं, इस्लाम ने जब हर एक पर फर्ज किया है तो हर जो भी साहिब निसाब है, जो भी साहिब माल है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो ऐसी सूरत में घर में पांच अपराध हैं, पांच पर कुर्बानी वाजिब है, तो उन सब की तरफ से एक कैसे अदा होगी? जैसे पांच के ऊपर नमाज फर्ज है तो पांचों को अदा करना है, एक के अदा करने से सबके जिम्मे से थोड़ा ही अदा हो जाएगा। फर्ज किफाया तो ऐसा है, एक अदा करे तो सबसे उतर जाता है, मगर ये ऐसा ये वाजिब किफाया नहीं है ना, कुर्बानी वाजिब किफाया नहीं है। जो भी साहेब सरबत है, सरमाया है, साहेब निसाब है, उसके जिम्मे कुर्बानी भी वाजिब है। फिर ये कुर्बानी भी अभी से पूछना शुरू कर दिए लोगों, ये खराबी रही तो चलता कि नहीं चलता, वो खराबी रही जानवर बंद चलता कि नहीं चलता, अभी से पूछ रही, चार दिन पहले मेरे से पूछ, अरे भाई अल्लाह की नस्बत पर कुर्बान कर रहे हैं, एक है अपनी जान की कुर्बानी और एक है अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज की कुर्बानी और एक है जानवर की कुर्बानी, बहुत बड़ा फर्क है ना कुर्बानियों में। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जा रहा था तो पहले से तो बताया नहीं गया था कि नतीजे क्या निकलने वाला है ना? यही वजह है कि जब फरिश्ता आके पूछा था कि कुछ मदद की जरूरत है तो उन्होंने कहा था कि हाँ मदद की तो जरूरत है, मगर आपकी मदद की जरूरत नहीं है, जिसकी मुझे मदद चाहिए वो तुमसे ज्यादा मेरे से करीब है। फिर जब उनको फेंका गया तब अल्लाह ने हुक्म दिया आग को, या नारुकूनी मर्दम व सलाम अल्लाह इब्राहिम, वही अपनी जान की कुर्बानी तो उसी वक्त पेश कर रहे थे। और ये आपका मालूम है कि बेटे की जो जान होती है बाप उसको अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता है, इसी वास्ते जज्बात के इजहार में बोल देते अल्लाह मियां मेरी उम्र उसको दे देंगे, बोल देते। मतलब क्या है कि उसकी जो जान होती है वो जान अपनी जान से ज्यादा प्यारी हो जाती है बाप को। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलाम ने अपने साहबजादे की कुर्बानी का फैसला कर लिया अल्लाह के मंशे से, तो अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज की कुर्बानी। और ये हम कमजोरों पर परवरदिगार आलम ने एक करम फरमा दिया कि नहीं ना तुम्हारे से वो हो सकता है ना वो हो सकता, तुम कम से कम जानवर की कुर्बानी दे दो तो उस सिलसिले में आगे पीछे हो। माल अल्लाह ने दिया, सरमाया अल्लाह ने दिया, जेवर अल्लाह ने दिया, जायदाद अल्लाह ने दी, और कुर्बानी आदमी नहीं करता। जब मौलवी अब बोलते हैं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वाजिब है, नहीं तो फिर बरकत नहीं होती, माल दूसरे रास्ते से निकल जाता, ऐसा बोलते ना, अगर तुम खर्च करने की जगह नहीं खर्च करोगे तो फिर दूसरे रास्ते से निकल जाता। हमारे एक दोस्त हैं, एक ही मकान में एक मकान में वो रहते थे, उसी के दूसरे फ्लोर पर दूसरे साहब रहते, इत्तेफाक से दोनों घर में नहीं, घर खाली किसी जगह गए हुए थे, सुबह सुबह मालूम हुआ कि साहब घर में डकैती पड़ गई, घर में चोर आए, दरवाजे तोड़े, कफल तोड़े, अलमारियां तोड़ी और माल सब लेकर गए। तो वो भी भाग के आया, ये भी भाग के गए, एक की का पूरा सरमाया लुट गया था, दूसरे साहब का झूका तू महफूज है, दूसरे साहब का जो हमारे दोस्त थे उनका सरमाया जूं का तू महफूज है, कोई चीज चोरी नहीं हुई होगी। मुझसे मिलके गए लगे के बोल साहब पूरे एहतमाम से मैं पाई पाई का हिसाब करके ज़कात अदा करता हूँ, शायद परवरदिगार आलम ने इसी वजह से मेरे माल की हिफाजत कर दी। तो मुअज़्ज़ज़ भाइयों मुअज़्ज़ज़ बहनों, अर्ज करना यह है कि अगर हम खर्च करने का जहाँ हुक्म है वहां खर्च नहीं करेंगे तो खर्च तो हो जाएगा, दूसरे रास्ते तो निकल जाते हैं। इसीलिए हर एक अपने बारे में मालूम कर ले कि मेरे जिम्मे ज़कात वाजिब है या नहीं। बच्चियां बहुत सारी ऊपर बड़ी बड़ी मौजूद होती हैं और उनकी ख़वातीन भी होती हैं महल्ले की, उनको भी सोचना चाहिए और यहाँ बैठे हुए मर्द अहबाब में जो बड़े हैं उनको भी सोचना चाहिए कि साहब मेरी हालत क्या है। अगर आपको खुद समझ में आता है कि मेरे जिम्मे कुर्बानी वाजिब है तो ऐसी सूरत में आपको अपने अपने सरमाए की हालत किसी और को सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद समझ में आता है नहीं कुछ है कुछ नहीं है, वाजिब है कि नहीं है, मेरे जिम्मे ये कर्ज है, मेरे ये हालात है, मेरे वो हालात हैं, तो ऐसी सूरत में किसी अपने करीब के बाएतमाद जानने वाले साहिब इल्म आलिम दीन से अपनी हालत सुना के पूछना। मुझसे पूछो ये नहीं बोल रहा हूँ, आपके अपने नजदीक जो शख्स काबिल एतबार है, काबिल एतमाद है, साहिब इल्म है, उससे अपनी हालत सुना के पूछ लो मेरे जिम्मे वाजिब है क्या, वाजिब है तो फिर ऐसी सूरत में अब उसके अदा करने में जरा भी आगे पीछे नहीं रहना। उलमा ने तो यहां तक लिखा है कि जिस जानवर को आप कुर्बान करना चाह रहे हैं उसको जरा पहले लाके रख लो, उसको खूब खिलाओ खूब पिलाओ, उसके पीछे थोड़ी सी मेहनत करो, जितना वक्त उसके पीछे लगाते हैं, जितना उसको खिलाते हैं, जितना पिलाते उस कदर उनसियत मोहब्बत बढ़ जाती है उससे, जितना ज्यादा ताल्लुक खाए मजा आता, फिर कुर्बानी देंगे तो अपने जज्बात की कुर्बानी उसी एतबार से होगी। लेकिन यहाँ अपने पास में अपने कुछ रहने को जगह नहीं है, जब जानवर बुला के रखने की जगह का मसला चूंकि पैदा हो गया तो इसलिए कल कुर्बानी करना है तो आज जाओ लाल भाई बोलते, वो भी जायज है ठीक है ये भी, लेकिन बतलाना ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू को दिल के जज्बात मतलूब है कि मुझसे कितना ताल्लुक है मेरे बंदे का, मुझसे कितनी मोहब्बत है मेरे बंदे को, मेरे हुक्म की कितनी अजमत है मेरे बंदे के दिल में, और मुझे राजी करने का जज्बा कितना है मेरे बंदे में। परवरदिगार आलम तो ये देखना चाहते हैं, उनको मालूम है, उसके बावजूद अमली तौर पर देखना चाहते हैं। इसीलिए कुरान पाक में फरमाया लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह के पास तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त नहीं जाता, खून नहीं पहुंचता, हाँ तुम्हारे दिल के जज्बात जाते। इसीलिए अच्छे से अच्छा फरबे से फरबा जानवर खरीदने का एहतमाम करना चाहिए, अपनी इस्तेदाद के हिसाब से कम अज कम इतना तो हो कि उसमें ऐब ना हो, कुर्बानी मशकूक ना हो जाए, कम अज कम इतना हो। ऐसे ही वो आजकल तोल के बेचने का रिवाज बहुत है, तोल के बेचना जो है मसले के एतबार से बाद में मसाइल पैदा होने का सबब बन सकता है, इस वास्ते कि आप ये समझ के ले रहे हैं कि इसमें 12 किलो निकलेगा, वो हिसाब से हिसाब करके दे रहे हैं आप, निकलेगा कितना उसका तो कोई सही अंदाजा नहीं, जब सही अंदाजा नहीं है तो ये अंदाजे की जो बय है, ये अंदाजे की बय शरीयत में ममनू है। इसीलिए बागात वगैरह में जब बिल्कुल फूल के बाद में इब्तदाई फल का छोटा सा हिस्सा लगा हुआ होता है उसके ऊपर नहीं कर सकते बय, इस वास्ते कि वो देख के करेंगे तो एक अंदाजा कायम करेंगे भाई इसमें 1 लाख फल निकलेगा, मगर क्या मालूम बड़ा होते होते उसमें से कितने जड़ जाएंगे, उसके नतीजे बाद में मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये अंदाजे का मामला शरीयत में सही नहीं है, इसकी बिना पर जब वो बेचते ही वैसा है तो खरीदार को चाहिए कि अंदाजा कायम करने के वास्ते या वो कीमत लगाने के वास्ते वैसा कर ले तो कर ले, लेकिन आप उसके उतार देने के बाद में बोलना भाई ये जानवर मैं इतने में ले रहा हूँ, किलो उलो का हिसाब किताब तो तुम तुम्हारे पास में रख लो, मैं तो ये जानवर बस इतने में लेता ताकि दुरुस्त हो जाए और खरीदो अच्छा, ऐबदार ना हो और शौक और जज्बे से खरीदो। मैं बंदा होने की हैसियत से मैं इस बात का जिम्मेदार था और पूरा कर देता अल्लाह के मुतालबे को तो बड़ा कारनामा नहीं था। अगर मुझसे मेरे जान की कुर्बानी मांगी जाती, मैं उनका बंदा था, वो मेरे खालिक और मालिक थे, वो मेरे रब और हाकिम थे, सब कुछ उन्हीं का है। अगर वो मुझसे मेरी अपनी जान की कुर्बानी मांगते तब भी दे देना मेरी जिम्मेदारी थी, और अगर दे देता तो उनकी दी हुई चीज उनको देता, कोई बड़ा कारनामा नहीं था। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, जान दी दी हुई उसी की थी, सच तो यह है कि हक अदा ना हुआ। कहने वाले ने तो यूं कहा, मगर उन्होंने ये करम फरमाया कि हमसे अपनी जान का मुतालबा नहीं किया, जानवर की कुर्बानी का मुतालबा किया। अब उसको अदा करने में भी आदमी ऐसा आगे पीछे होगा। हम लोगों को ऐसा समझ में आता, कुर्बानियों के जमाने में कुर्बानियों को देख के बहुत लोगों को कुर्बानियां दे रहे हैं, इस साल बहुत कुर्बानियां हुई है बोल के समझते, बिल्कुल ऐसा ही समझते जैसे रमजान में मस्जिदा भर गए तो देख के ऐसा समझते जैसे पूरे मुसलमान मस्जिद में जा गए। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐन उसी वक्त में जबकि पूरी मस्जिदें भरी हुई होती है, मुसलमानों से पूरे बाजार भी भरे हुए होते हैं। इसी तरीके से कुर्बानियों का भी हाल, हजारों लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती अदा नहीं करते। बहरहाल अल्लाह को राजी करने के लिए हमें कुर्बानी का एहतमाम करना है, अच्छे जानवर की कुर्बानी देनी है, समझदारी का मुजाहरा करना है, और उस अमल के जरिए से बारगाह इलाही में अपना ये जज्बा पेश करना है कि मौला आपने इसकी कुर्बानी का मुतालबा फरमाया, वो मैंने पेश कर दिया, और जिस वक्त में जिस चीज का मुतालबा आपके जानिब से होगा, मैं अपने दिल में ये जज्बात रखता हूँ कि उस मौके पर उस तरह की कुर्बानी देने के लिए मैं हमेशा आमादा और तैयार हूँ। चुनाचे जिस मुबारक तरीन शख्सियत की यह सुन्नत है, उनकी जिंदगी में आप देखिए जिस वक्त में जिस चीज का अल्लाह की जानिब से मुतालबा हुआ, उस वक्त में उस मुतालबे को उन्होंने पूरा किया। ऐलान तौहीद का मुतालबा हुआ, मुखालिफ माहौल में ऐलान तौहीद कर दिया। घर छोड़ने की नौबत आई, अल्लाह की निस्बत पर घर छोड़ दिया। वक्त के बादशाह से मुनाजिरे के मौके पर उसके सामने पहुंचकर उससे सवाल जवाब की नौबत आई तो उसके वास्ते भी आमादा और तैयार हो गए। अलम तरा इल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहु अल-मुल्क। और आपको मालूम है कि बादशाह ने वक्त के सामने उसके खिलाफ कुछ बोलना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था। इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजलुल जिहाद कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जाहिर। अफजल तरीन जिहाद क्या है? सच बात का कह देना, हक बात का कहना जालिम बादशाह के सामने। उसका वक्त आया तो उसके वास्ते तैयार हो, आग में डाले जाने का वक्त आया तो उसके वास्ते आमादा हो गए, मुल्क छोड़ने की नौबत आई तो उसके वास्ते आमादा हो गए, अपने एक लूते छोटे जिगर पारे और उसकी माँ को, उनकी वालिदा को दूर दराज इलाके में ऐसी जगह पर जहां खेती बाड़ी नहीं उगती उस जगह ले जाकर छोड़कर आने का हुक्म दिया, जहां कोई दूसरा शख्स नहीं था, जाके वहां उनके साथ रह जाओ कहते तो शायद इतना मुश्किल नहीं था। बीवी को बच्चे को ले जाओ, जाके बैतुल्लाह के पास में रह जाओ, मक्के में जाके रह जाओ, तो ये भी है वो भी है, शायद उतना मुश्किल नहीं था मसला। मसला जो मुश्किल था वो ये कि जाके उनको छोड़ के वापस आ जा बेटा, था इसके वास्ते भी तैयार हो। और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जिस बच्चे की परवरिश हुई उसकी कुर्बानी का मुतालबा हो गया, तो उनकी कुर्बानी के वास्ते भी तैयार हो गए। आज भी मिला के पहाड़ वाले हिस्से में छोटा सा पिलर बना के रखे हैं, वहां ले जाके करे थे जाने और जाकर आने वाले लोग जो पुराने हैं उनको मालूम करता हूं किस जगह लेकर गए थे कुर्बानी। वहां जाकर उन्होंने बेटे को नीचे डालकर चलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम्मा अस्लम वतल्लहु लिल जबीन وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. جب اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا اور ان کو ذبح کر رہے تھے, پروردگار عالم نے فرمایا, آواز دی, وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا, اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, جو خواب میں دیکھا تھا اس کو پورا کر دیا, جو دیکھے تھے نا خواب میں وہ پورا ہو گیا. خواب میں کیا دیکھے تھے؟ ذبح کر رہا ہوں, یہ دیکھے تھے. انی اذبحک, میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, یہ دیکھے تھے. جو دیکھے تھے وہ پورا ہو گیا. اس لیے سمجھ میں آنے کی وجہ سے بول رہے ہیں, ذبح کر رہا ہوں کہ مفہوم میں جو خصوصیت ہے وہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی پتا نہیں, اس واسطے وضاحت کے لیے بولنا پڑ رہا. خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا انہوں نے کہ بیٹے کو ذبح کر دیا, یہ نہیں دیکھا تھا. ذبح کر رہا ہوں یہ دیکھا, وہی حالت پوری عملی حیثیت سے ہو گئی سامنے آ گئی. پھر اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے ایک دنبے کو بھیج دیا, فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, جو فرمایا ہم اچھا معاملہ کرنے والے, اچھا عمل کرنے والے, صفت احسان والوں کے ساتھ میں ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, یہ جو وہاں قربانی ہوئی تھی یہ قربانی, یہ سنت ہے, یہ سارا نہ قربانی ہماری آپ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی جو مطالبہ ہوا وہ مطالبہ انہوں نے پورا کیا. اللہ کے منشے کی تکمیل میں جب کبھی بھی جو تقاضا سامنے آیا اس تقاضے کی انہوں نے تکمیل کی, اور ان تقاضوں کی تکمیل میں جو سب سے بڑی گویا قربانی کی صورت تھی وہ بھی پیش کر دی. آج کم از کم ہم جانور ذبح کرتے ہوئے یہ جذبات تو رکھیں کہ میں بندہ ہوں, وہ میرے اللہ ہے, ان کی جانب سے جو مطالبہ ہو اس مطالبے کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے, اور اسی کے گویا جذبے کے اظہار اور تجدید کے لیے ہر سال یہ قربانی والا عمل ہے. اگر اتنا سمجھ میں آیا تو قربانی بھی صحیح جذبے سے ہوں گی, صحیح ڈھنگ سے ہوں گی, پھر اس میں گڑبڑی نہیں کریں گے. اور بے شعوری کا اور حقیقتوں سے دوری کا یہ عالم ہے, جانور ذبح کرنے کے واسطے ایک آدمی باہر ملا, ایک ضعیف صاحب ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ذبح کرنے والا کاٹنے والا میرے ساتھ آ جائے, ایک نوجوان صاحب ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کاٹنے والا میرے ساتھ میں آ جائے. ضعیف شخص کا باہر نکلنا چلنا ہی ایک مسئلہ ہو رہا ہے, پھر بھی یوں تو کر کے وہ پہنچ گیا بیچارہ, اور یہ جو نوجوان ہے بازو میں یہ تو یہاں نہیں ملا دوسری جگہ جا کے, ایک جگہ نہیں ملا دوسری جگہ جا کے, اس وقت میں نہیں ملا تھوڑی دیر سے کر لے سکتا, اس کے گھر میں کوئی دوسرا فرد موجود نہیں ہے اور یہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا, تو ہمارے نوجوان سے اتنی قربانی نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے میرے جانور کے کاٹنے سے پہلے ان کا کاٹ لو, یہ بڑے میاں کا معاملہ پہلے حل کر لو, اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی, یہ چھوٹی قربانی نہیں ہو سکتی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت میں قربانیوں میں خراب خراب قسم کی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ میں ان سب کو درست رکھنے کا اہتمام کریں. جس وقت پہ امت مسلمہ اللہ کے احکام کو جو تو ماننے کا اہتمام شروع کر دے گی, اور اللہ کے دیے ہوئے دو عظیم الشان سرمائے جان اور مال کی قربانی اللہ کے لیے دینے کا اس کی زندگی میں فیصلہ ہوگا اور عملی حیثیت سے اس کا مظاہرہ ہوگا, دشمن بے نام و نشان ہونا تو لازم ہے سمجھو. پوری دنیا اس وقت میں کوشش میں ہے جتنے ختم کر سکتے ہیں اسلام سے نسبت رکھنے والوں کو ختم کرو, بلکہ باقاعدہ پلاننگ بن گئی, سینکڑوں سال سے کوشش کر رہے, بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ اربوں کروڑوں لوگوں کا معاملہ ختم کر کے بس صرف پوری دنیا میں صرف اتنے لاکھ رہنا چاہیے یہ بھی طے کر کے رکھ لیے, تاکہ مزے ایسے زندگی گزار سکیں. جو رہنا چاہے یا جو تھوڑے رکھنا چاہتے ہیں انہوں کب رہنے والے, پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر امت مسلمہ اللہ کے احکام سے جڑی رہے گی اور قربانیوں سے وابستہ رہے گی تو انشاءاللہ العزیز دشمن اپنے منصوبوں میں ناکام ہوتا رہے گا اور مسلمان انشاءاللہ العزیز مستحکم اور مضبوط اور آگے بڑھتے رہیں گے. اس لیے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے, بچوں سے بھی کہنا ہے کہ اس سلسلے میں خاص طور سے اہتمام کریں کہ اللہ کا جو حکم آئے پورا کریں. بچوں کے لیے اس وقت میں قربانی کا حکم نہیں ہے, نماز کا حکم ہے تو بھی نماز پڑھ, کیا فرق ہوتا ہے اس میں. ایک ہمارے بزرگ تھے بولتے تھے کہ اوروں کو کہیں بھی عبادت کے لیے جانا ہے, پوجا پاٹھ کے لیے جانا ہے تو کچھ لے جانا پڑتا ہے, تو بھی لے جانا, مٹھائی لے جاؤ, ناریل لے جاؤ, یہ لے جاؤ, لے جاؤ, کچھ تو بھی لے جاؤ. بار اپنے کو تو عبادت کے واسطے کچھ بھی لے جانا ہے, سمجھانے کے لیے بولتے تھے. پرانی حیدرآباد کی دکنی زبان میں بولے, حیدرآباد کی دکنی پرانی زبان میں, پٹی کوڑی نکو نوا پیسہ نکو, وہ زبانے میں نیا نیا پیسہ پرانا پیسہ چلتا تھا, پٹی کوڑی نکو نوا پیسہ نکو, لے کو اناج ہے لے کو جانا نکو, اٹھو اللہ اکبر کی پوجا کرو. بول کے ان کی ایک نظم تھی پوری. بچوں کے لیے نماز کا حکم ہے تو بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کتنے ہی نوجوان بچے بولتے رہتے ہیں صاحب وہ کبھی ہو جاتی نماز کبھی نہیں ہوتی. ارے بھائی کیا ہو سکتا ہے پھر اگر نماز بھی نہیں ہو سکتی؟ جس وقت میں جو تقاضا ہو کسی بھائی کو, کسی بہن کو, کسی بچے کو, کسی بچے کو شریعت کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرنے کا اپنا مزاج بناؤ, انشاءاللہ اللہ اس سے ترقی ملے گی, روح ملے گا اسلام کو, اور اپنی زندگی اچھی ہوگی اور اپنی آخرت بھی بنے گی. اللہ تعالیٰ سے علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا, اللهم إنا نسألك علما نافعا, اللهم إنا نسألك علما نافعا, وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك على سيدنا محمد.